पिछले पाठ में फल के बारे में आपको बताया गया कि फल दो प्रकार का होता है, एक लौकिक फल और एक शास्त्रीय फल। तो कारिका में जो कारिका मालूम है ना, कारिका कहते हैं शास्त्र में जो श्लोक होते हैं ना, श्लोक के द्वारा जो सिद्धांत बताए जाते हैं उन श्लोकों को कारिका कहा जाता है। तो ये जो फल व्यापारी और धातु के द्वारा, कारिका के द्वारा जो धातु का अर्थ बताया गया कि धातु के दो वाच्य होते हैं, फल और व्यापार, तो वह जो फल है वह फल कैसा होता है, तो उसके लिए पिछले पाठ में कहा गया कि फल दो प्रकार का होता है, एक लौकिक फल और एक शास्त्रीय फल। तो यहाँ जो फल व्यापारी और धातु में फल है या शास्त्रीय फल लेना है, हमें लौकिक फल नहीं लेना है। तो जब हम शास्त्रीय फल लेते हैं तो पच धातु जो है उसका फल क्या होगा, तो विकृति होगा। विकृति के बारे में आपको मालूम है कि चावल को जब हम पकाते हैं तो चावल की जो कठोरता है उसके बदले कोमलता आ जाती है, वह जो कोमलता है, मृदुता जो है, उसी का नाम विकृति है। ऐसे ही गच्छति में गम धातु है, उसका फल हो जाएगा संयोग। पतति है, पतति में जो पत धातु है उसका फल हो जाएगा विभाग। तो इस तरह से शास्त्र की दृष्टि में सब धातु के अलग 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 फल होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने फल के बारे में ग्रंथकार ने, कौंड भट्ट ने इतना ही बताया कि फलम विकलित्ति आदि, इतना कह करके फल का इन्होंने परिचय दिया। अब जो है व्यापार के बारे में ये परिचय देने जा रहे हैं कि ये व्यापार क्या होता है, और इसमें जो है ना थोड़ा शास्त्रार्थ भी आएगा आगे जा करके। तो देखिए, इन्होंने व्यापार का लक्षण किया है कि व्यापारस्तु भावनाभिधा साध्यत्वेन अभिधीयमाना क्रिया। व्यापारस्तु भावनाभिधा साध्यत्वेन अभिधीयमाना क्रिया। अब ये व्यापार शब्द और भावना शब्द, ये दोनों जो हैं पर्यायवाची शब्द हैं, माने एक ही अर्थ को दोनों बताते हैं, आप व्यापार कहिए या भावना कहिए। अच्छा, व्यापार शब्द से ना, फिर से मैं कह दूं कि ये जो है ना लेन देन वाला व्यापार नहीं है, इस व्यापार का मतलब होता है क्रिया, जैसे गमन क्रिया, अध्ययन क्रिया, भोजन क्रिया, इस तरह से क्रिया को जो है ना व्याकरण शास्त्र में व्यापार कहते हैं। तो व्यापारस्तु भावना अभिधा, अभिधा का मतलब यहाँ पर है नाम, माने व्यापार का दूसरा नाम जो है वह है भावना। अब इसकी यहाँ तो केवल पर्यायवाची शब्द इतने से बताया कि व्यापारस्तु भावनाभिधा, माने व्यापार का दूसरा नाम जो है अभिधा जो है, माने नाम जो है वह भावना है। तो केवल पर्यायवाची शब्द बताने से काम नहीं चलेगा, इसका और विवरण करना चाहिए। तो आगे विवरण करते हैं, साध्यत्वेन अभिधीयमाना क्रिया, माने क्रिया को ही जो है व्यापार कहते हैं और क्रिया को ही भावना भी कहते हैं। लेकिन वह क्रिया कैसी होनी चाहिए, तो उसके लिए कहते हैं कि साध्यत्वेन अभिधीयमाना। ये साध्यत्वेन अभिधीयमाना, ये जो इसमें जो दो शब्द है, एक है साध्यत्वेन, दूसरा है अभिधीयमाना। तो अभिधीयमाना का अर्थ होता है कहे जाने वाली, माने जिसको कहा जाए, जिसको बोला जाए, उसे कहते हैं अभिधीयमाना। और साध्यत्वेन का अर्थ होता है कि साध्य रूप से, साध्यत्वेन में तृतीया विभक्ति है, और तृतीया का अर्थ होता है कर्ता ने कर्म को करण से अर्थ होता है। तो साध्यत्वेन इसमें अगर देखें आप, तो साध्यत्वेन में तीन पार्ट है, एक है साध्य, दूसरा है साध्य त्व, और तीसरा है साध्य त्व और तृतीया विभक्ति। तो तृतीया विभक्ति का अर्थ हो गया से, त्व जो है यह प्रत्यय है, इसका अर्थ होता है रूप या धर्म भी अर्थ कर सकते हैं, और साध्य का मतलब होता है सिद्ध करने योग्य। तो साध्यत्वेन अभिधीयमाना, अब हमने एक एक शब्द का अर्थ तो जान लिया ना, कि साध्य मतलब सिद्ध होने योग्य, साध्यत्व मतलब साध्य रूप, साध्यत्वेन मतलब साध्य साध्य रूप से, अभिधीयमाना माने कहे जाने वाली, बोले जाने वाली माने जिसको बोला जाए। तो इस तरह से साध्यत्वेन अभिधीयमाना क्रिया का मतलब ये हुआ कि जिस क्रिया को करते करने के समय में हम यह कहते हैं कि यह क्रिया सिद्ध होने जा रही है, तो जिसको हम कहते हैं कि यह सिद्ध होने जा रही है उसके उसी को वही क्रिया जो है ना वह व्यापार कहलाती है या भावना कहलाती है। देखिए ऐसा है कि क्रिया दो टाइप की होगी ना, एक होगी सिद्ध होने वाली क्रिया जो अभी सिद्ध हो रही है, सिद्ध हुई नहीं है, सिद्ध होने जा रही है, और एक दूसरी क्रिया होगी जो सिद्ध हो चुकी, पहले ही जो है ना वह क्रिया हो चुकी। अब जैसे जैसे हम अभी खाना कोई पका रहा है तो उस समय में हम कहते हैं ना कि यह पका रहा है, तो यह हो गया साध्यत्वेन अभिधीयमाना, अर्थात यहाँ पर पाक क्रिया सिद्ध होने जा रही है। तो जिस समय में वह सिद्ध नहीं रहती है, सिद्ध हो रही होती है, उस जैसे पचति के समय में पाक क्रिया जो है पहले से सिद्ध नहीं है, उसको अभी सिद्ध होना है, सिद्ध किया जा रहा है। तो इस तरह से जिस क्रिया को हम कहते हैं कि यह क्रिया सिद्ध होने जा रही है माने सिद्ध हो रही है, अभी सिद्ध हुई नहीं है, ऐसी जो क्रिया है इसी को कहते हैं साध्यत्वेन अभिधीयमाना क्रिया, माने साध्य रूप से जिसका अभिधान किया जाए, अभिधान माने कथन, तो साध्य रूप से जिसका कथन किया जाए वह जो क्रिया है उसी क्रिया को हम व्यापार कहते हैं अथवा भावना कहते हैं। इस तरह से व्यापार का इन्होंने लक्षण बताया, और इस लक्षण में इन्होंने एक प्रमाण दिया वाक्यपदीय ग्रंथ का। ये वाक्यपदीय ग्रंथ हो सकता है कि पहली बार आपने सुना हो। क्या है कि व्याकरण शास्त्र में तीन प्रवर्तक आचार्य हैं, पाणिनी, कात्यायन और पतंजलि। एक चौथे भी आचार्य हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और उनकी बात को व्याकरण लोग प्रमाण के रूप में मानते हैं, वो आचार्य हैं भर्तृहरि। तो भर्तृहरि ने एक पुस्तक लिखी है, बड़ी पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है वाक्यपदीयम। तो वाक्यपदीयम में क्या है कि कारिकाएं लिखी गई हैं, माने व्याकरण के सिद्धांतों को श्लोकों के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो उस वाक्यपदीय ग्रंथ की जो कारिका होती है ना, उसको जगह जगह जो है इस ग्रंथ में कोड किया गया है प्रमाण के तौर पर। तो ये जो इन्होंने व्यापार का लक्षण किया कि साध्यत्वेन अभिधीयमाना क्रिया, माने जिस क्रिया को साध्य रूप में कथन किया जाए वह क्रिया व्यापार कहलाती है, इस लक्षण को कहने के लिए प्रमाण के तौर पर वाक्यपदीय की कारिका बताई जा रही है। वो कारिका क्या है कि यावत सिद्धम असिद्धम वा साध्यत्वेन अभिधीयते आश्रित क्रम रूपत्वात् सा क्रिया इति अभिधीयते। इस कारिका में ये कहा गया है कि क्रिया किसको कहा जाता, अभिधीयते माने कथ्यते, माने क्रिया किसको कहा जाता है। तो कहा कि यावत सिद्धम असिद्धम वा, कहा कि दो तरह की क्रिया होगी, एक होगी सिद्ध क्रिया और एक होगी असिद्ध क्रिया। सिद्ध क्रिया जो है वह पहले हो चुकी होती है भूतकाल में ही, और असिद्ध क्रिया जो है वह वर्तमान काल में होती रहती है। तो सिद्ध क्रिया हो अथवा असिद्ध क्रिया हो, दोनों टाइप की क्रियाओं को इन्होंने पकड़ा है यहाँ पर, इसलिए कहा यावत सिद्धम असिद्धम वा। ऐसा है कि यावत शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ होता है यावत मतलब जब तक, और दूसरा यावत का अर्थ होता है जितने। तो यहाँ पर यावत का अर्थ ना जितने है, माने यावत सिद्धम असिद्धम वा, माने जितने भी सिद्ध और असिद्ध क्रियाएं हैं साध्यत्वेन अभिधीयते, उनको साध्यत्वेन कथन किया जाता है, साध्य रूप से कहा जाता है, ये कहा जाता है। सिद्ध क्रिया हो तो भी कहते हैं कि यह साध्य है, और असिद्ध क्रिया है तो भी कहा जाता है कि यह साध्य है। माने क्रिया जो है ना अपने आप थोड़े होती है, उस क्रिया को जब हम करते हैं तब जाकर के वह क्रिया सिद्ध होती है। तो क्रिया को चूंकि किया जाता है इसीलिए उसको हम साध्य कहते हैं। तो यावत सिद्धम असिद्धम वा, साध्यत्वेन अभिधीयते का मतलब हुआ जितनी भी सिद्ध क्रियाएं हैं अथवा जितनी भी असिद्ध क्रियाएं हैं सभी क्रियाएं साध्यत्वेन अभिधीयते, यह क्रिया साध्य, यम क्रिया साध्या, यम क्रिया साध्या, यह क्रिया जो है साध्य है, इस तरह से अभिधीयते माने कथ्यते, व्यवहार में ऐसा कहा जाता है, ऐसा बोला जाता है। फिर आगे कहते हैं कि आश्रित क्रम रूपत्वात् सा क्रिया इति अभिधीयते, कहा कि इसको इसका नाम क्रिया क्यों पड़ा, जब ये कहते हैं कि सिद्ध और असिद्ध को ये कहते हैं कि यह साध्य है तो इसका नाम साध्या होना चाहिए, इसको क्रिया क्यों कहा जाता है, तो इसका उत्तर देते हैं कि आश्रित क्रम रूपत्वात्, कि कोई भी जो क्रिया है वह क्रमिक होती है, और माने क्रमिक होती है, जैसे खाना पकाना हुआ तो आप क्या करते हैं कि चूल्हे को जलाते हैं, चूल्हे जलाने के बाद उसके ऊपर बर्तन रखते हैं, फिर जो है उसमें पानी डालते हैं, फिर नीचे से जब आग लगती है तो पानी गर्म जब हो जाता है फिर उसमें आप चावल छोड़ते हैं, फिर थोड़ी देर तक जो है ना चावल पकता रहता है, जब चावल पक जाता है फिर उस बर्तन को आप नीचे करते हैं, उसका पानी निकालते हैं, तब जा कर के जो है चावल का पकना क्रिया जो है वह हो पाती है, सिद्ध होती है। इस तरह से आपने देखा ना, एक ही बार में तो पचती क्रिया नहीं हो गई ना, क्रमिक हुई, पहले ये उसके बाद ये उसके बाद ये, इस तरह से क्रमिक होने के कारण जो है ना इस व्यापार को हम क्रिया कहते हैं। तो व्यापार को अगर आप देखें तो चार नामों से आप बोल सकते हैं, एक तो व्यापार हो गया, दूसरा भावना हो गई, तीसरा साध्या भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी क्रिया को हम ये कह, चाहे वह सिद्ध हो या असिद्ध हो, हम ये कहते हैं कि यह सिद्ध होने जा रही है या ये सिद्ध हो चुकी है, तो इस तरह से साध्य के रूप में चूंकि कथन होता है इसलिए उसको हम साध्या भी कह सकते हैं, और चूंकि क्रमिक होता है एक बार में ही नहीं हो जाता है, आश्रित क्रम रूपत्वात् माने क्रम पर आश्रित इसका रूप है, स्वरूप, रूप माने स्वरूप, क्रिया का जो स्वरूप आश्रित होता है वह क्रम पर आश्रित होता है, इसीलिए इसका नाम क्रिया होता है। तो यही है आश्रित क्रम रूपत्वात् सा क्रिया इति अभिधीयते। तो इस तरह से व्यापार के बारे में इन्होंने बताया, अभी तक निष्कर्ष यही निकला कि व्यापार का दूसरा नाम जो है वह भावना है, और साध्यत्वेन अभिधीयमाना क्रिया, कि क्रिया का जो कथन होता है, क्रिया को जो हम बताते हैं वो किस रूप में बताते हैं, तो साध्य रूप में बताते हैं। अब कारिका में जो बताया गया ये कहा कि सिद्ध हो क्रिया हो या असिद्ध क्रिया हो, दोनों को भी साध्य नाम से जो है कहा जाता है, और फिर कहा कि क्रिया जो है क्रम पर आश्रित होती है, क्रिया का रूप जो है, स्वरूप जो है क्रम पर आश्रित होता है, इसीलिए इस व्यापार का नाम जो है क्रिया भी होता है। इस तरह से व्यापार के क्या क्या नाम हो सकते हैं वो हमने जो है यहाँ पर देखा। अब यहाँ पर प्रश्न किया जाता है, इन्होंने व्यापार के लक्षण में कहा था ना कि साध्यत्वेन अभिधीयमाना क्रिया, माने क्रिया को यह कहते हैं कि यह साध्य है ऐसा कहते हैं, तो यह साध्य है ऐसा जिसको कहते हैं वही व्यापार है, ये कहा था ना साध्यत्वेन अभिधीयमाना क्रिया। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि यह साध्य है क्रिया ऐसा क्यों कहा जाता है, इसीलिए वही प्रश्न उठा रहे हैं, न च साध्यत्वेन अभिधाने मानाभाव, मान अभाव, मान माने प्रमाण, तो मानाभाव माने प्रमाण अभाव, कहा कि आपने जो ये लक्षण किया कि क्रिया को साध्य के रूप में अभिधान किया जाता है, साध्य के रूप में कथन किया जाता है, इस में प्रमाण क्या है, प्रमाण बताइए, तो प्रमाण आगे बताते हैं कि पचति पाकः करोति कृतिः इत्यादौ, कहा कि पचति कहते हैं, पचति माने पाक क्रियाम करोति माने पकाता है, खाना पकाता है, तो पचति कहने के बाद जो है ना कोई जिज्ञासा नहीं होती, कोई जिज्ञासा नहीं होती मतलब ये पाक होगा या पाक हो चुका है या पाक हो रहा है, इस तरह से जिज्ञासा नहीं होती, क्योंकि पचति में ही ये क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि पाक क्रिया अभी हो रही है। तो पचति में पच धातु है और पाकह में भी पच धातु है। देखिए एक ही धातु है दोनों में, पचति में भी और पाकह में भी, लेकिन पचति सुनते हैं ना तो जिज्ञासा नहीं होती है, हम समझ जाते हैं पचति सुन करके कि पाक क्रिया अभी हो रही है, इसमें ये नहीं जिज्ञासा होती कि पहले हुई या बाद में होगी। लेकिन पाकह शब्द जब सुनते हैं तो पाकह में भी पच धातु है, जब लेकिन इसको सुनते हैं तो प्रश्न आता है मन में, जिज्ञासा होती है कि पाकम करोति अथवा पाकम अकरोत अथवा पाकम करिष्यति, माने पाक अभी कर रहा है कोई या पाक को कर चुका है कोई या पाक को करेगा भविष्य में, इस तरह से देखिए धातु एक ही है पचति में और पाकह में, लेकिन पचति सुनकर के जिज्ञासा नहीं होती और पाकह सुनकर के मन में जिज्ञासा होती है। ऐसे ही करोति और कृति ही, करोति में भी क्री धातु है और कृति में भी क्री धातु है, लेकिन करोति सुनकर के ये जिज्ञासा नहीं होती मन में कि ये पहले हुआ या अभी हो रहा है या बाद में हो रहा है, हम समझ जाते हैं कि अभी हो रहा है। लेकिन कृति में भी क्री धातु है, लेकिन यहाँ पर भी जिज्ञासा होती है, कृति शब्द को सुनते हैं कि कृतिम करोति अथवा कृतिम अकरोत अथवा कृतिम करिष्यति। तो इस तरह से देखिए कि पचति और पाकह में एक ही धातु है, लेकिन पचति प्रयोग में जिज्ञासा नहीं होती और पाकह में जिज्ञासा होती है। ऐसे करोति और कृति में धातु एक ही है क्री धातु, लेकिन करोति सुनकर के जिज्ञासा नहीं होती और कृति सुनकर के जिज्ञासा होती है। इस तरह से धात्वर्थ अवगम अविशेषे भी, ये जो दो दो टाइप के शब्द बताए गए हैं, इसमें धात्वर्थ जो है धातपच धातु है, उसका जो अर्थ है पाक, उसमें अवगम अविशेषे भी, माने पाक अर्थ तो दोनों में से निकलता है, पचति कहते हैं तो भी पाक अर्थ निकलता है, पाकह कहते हैं वो भी पाक अर्थ निकलता है। वही कहा कि धात्वर्थ अवगम, अवगम माने ज्ञान, तो धात्वर्थ जो है यहाँ पर पाक, उसका अवगम जो है ज्ञान जो है अविशेष है, विशेष माने अलग अलग, अविशेष माने एक टाइप का, तो एक ही टाइप का धात्वर्थ का ज्ञान होता है, किंतु क्रियांतर आकांक्षा क्रियांतर अनाकांक्षा यो दर्शन सेव मानत्वात्, किंतु यहाँ क्या होता है कि पचति और करोति सुनते हैं तो क्रियांतर की जिज्ञासा हो, क्रियांतर माने अन्य क्रिया, अन्य क्रिया जैसे पाक भवति अथवा पाक भविष्यति, इस तरह से तो दूसरी क्रिया की जिज्ञासा होना, आकांक्षा माने जिज्ञासा, क्रियांतर माने अन्य क्रिया, तो क्रियांतर की आकांक्षा का होना और क्रियांतर की आकांक्षा का न होना, ये जो दो टाइप से जो व्यवहार में देखा जाता है, इसी से ये सिद्ध होता है कि साध्यत्वेन अभिधीयमाना क्रिया, माने क्रिया का कथन जो है वह साध्य के रूप में ही होती है। तो इन्होंने जो प्रश्न उठाया था कि साध्य के रूप में कथन में क्या प्रमाण है, उसका प्रमाण इन्होंने दिया कि पचति और पाकह में धातु एक ही है, किंतु पचति सुनकर के क्रियांतर की आकांक्षा नहीं होती, पाकह सुनकर के क्रियांतर की आकांक्षा होती है, करोति कृति में भी ऐसे ही, करोति सुनकर के क्रियांतर की आकांक्षा नहीं होती, कृति सुनकर के क्रियांतर की आकांक्षा होती है। ये जो आकांक्षा मतलब जिज्ञासा का होना न होना जो है, यही साध्यत्व साध्य रूप से क्रिया के कथन में प्रमाण होता है। इस तरह से इन्होंने जो प्रमाण अभाव कहा था उसमें इन्होंने सिद्ध कर दिया कि नहीं, प्रमाण का भाव है, अभाव नहीं है। आज का पाठ यहीं तक रखते हैं।